फिर देखें, अब वो कहती है, और ये भी बात इसी औरत की बात ही लगती है बज़ाहिर, वैसे तो बाज़ तफ़सीरों में लिखा के हो सकता है यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात हो, लेकिन ज्यादा यही लगता है कि ये औरत ही कह रही है, क्योंकि उसी का मुकालमा कि ममा उबर री उ नफसी, मैं ये नहीं कहती कि मैं बिल्कुल बरी हूँ, जिम्मा हूं और मैंने कुछ किया ही नहीं है, कह रही है ना कि मैंने, मुझको पता चल जाए कि मैंने अपने शोहर की तो खयानत नहीं की, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि मेरा तो कोई कसूर ही नहीं है। जाहिर है उसका कसूर तो था, उसने जो कोशिशें की थी वो उसका बहुत बड़ा कसूर था। इन नफ्स अल अम्मारा तुम बिसूई, नफ्स तो इंसान को हुक्म देता ही है बुराई का, इल्ला मा रहिम रब्बी, मगर वो ही बच सकता है जिसके ऊपर मेरा रब रहम करे, इन रब्बी गफूर रहीम, बेशक मेरा रब गफूर रहीम है। इतना हद तक तो वो जानते थे अल्लाह को, बाकी ये कि शिर्क भी करते थे, जैसे वो कह रही है हाशा लिल्ला, तो अल्लाह को तो जानते थे इतना। तो यहां से बाज लोगों ने ये कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि मेरे तो मैं अपने आप को बरी नहीं कहता, क्योंकि मेरे दिल में वसवसा तो आया था, लेकिन बात यह कि नफ्स तो इंसान को, नफ्स मारा तो उस बुराई की तरफ लेकर ही जाता है, वो ही बच सकता है जिसको मेरा रब बचाए। और नफ्स भी तीन किस्म के नफूस का कुरान पाक में जिक्र है, एक नफ्स अम्मारा है, एक नफ्स लवामा है, एक नफ्स मुतमाइना है, जो नफ्स मुतमाइना का जिक्र सूरह फजर में है। तो लवामा तो मलामत करता रहता है, और ये नफ्स अम्मारा जो है ना, इंसान को बुराई की तरफ लेके जाता है। नफ्स लवामा जैसे इंसान का जमीर कह ले वो होता है, इंसान मुतमाइना वो मोमिन का नफ्स होता है, जो इंसान ना मुतमाइन रहता है। ठीक है, तो ये उसने भरी दरबार में उसने ये बात कह दी कि हाँ मैं गिल्टी तो हूं, मैं ये नहीं कहती कि मैं मासूम हूं, मगर मैंने खयानत नहीं की थी कुछ, तो एतराफ उसने कर लिया। अब सारी बात समझ आ गई सबको, तो अब बादशाह ने क्या कहा, वकाल अल मलिक तूनी भी, तो कहा बादशाह ने उसको लेकर आओ मेरे पास, अस्तखलिस हूँ ली नफसी, मैं उसको अपने लिए खालिस कर लूँ, अपने काम में यूज करूँ, यानी अपना करीबी बना लूँ, स्पेशली मेरा देख ना, एक बंदा होता है ना मेरा पर्सनल सेक्रेटरी, या मेरा पर्सनल मेरा साथी, या मेरा खास मेरा मुशीर, या खास मेरे काम करने वाला। ठीक है, अब देखें ये फायदा हुआ ना, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब अपनी पाक दामनी वाजे करने के लिए दरख्वास्त की कि पहले मेरा मामला क्लियर किया जाए, तो पहले बादशाह ने सिर्फ ये कहा था कि उसको लेकर आओ, अब बादशाह कह रहा है कि मैं उसको अपने लिए सिर्फ रखूंगा, मेरा खास वो बंदा होगा, अपने इनर सर्कल में उसको रखूंगा, तो फर्क पड़ा ना। अब बादशाह को भी पता चल गया कि ये कितने किस किरदार के इंसान है, और कितने सच्चे हैं, और वाकई बेगुनाह है। फलम कलम हो, तो जब उसने कलाम किया उससे, यानी किससे, यूसुफ अलैहिस्सलाम से, हु की जमीर यूसुफ की तरफ जा रही, बादशाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम से जब बात की, तो बादशाह ने क्या कहा, इन्ना कल यौम लदैना मकीनुन अमीन, बेशक आप आज के दिन, यानी जैसे हम कहते हैं ना, आज के बाद बस तुम ये हो, आज के बाद बस ये, तो वो कहता है आज के दिन तुम्हारे पास बड़े मर्तबे वाले और अमानतदार हो। कैसे उसको पता चला ये अमानतदार है, ट्रस्टवर्दी है, कि ऐसी जगह पे जहां पे उनको पूरी आजादी थी हर तरह की, कि औरत हसीन भी है, ताकतवर भी है, बड़ी मालदार भी है, बड़े आदमी की बीवी भी है, मालकन भी है, कोई देख भी नहीं रहा, वहां पे भी जो अमानतदारी के साथ रहे, तो उससे ज्यादा बड़ा अमीन कौन हो सकता। वहां पे भी जहां पे एक औरत दावत खुद दे रही है गुनाह की, और कोई इंसानी तौर पे देखने वाला नहीं, और वो औरत खुद खुद आगे बढ़ रही है, वहां पे खुद को रोक लेना बहुत ही ईमानदारी होगा जो करेगा। तो आप तो हमारे पास बहुत बड़े मर्तबे वाले हैं, तो यानी आप यूसुफ अलैहिस्सलाम की रेपुटेशन जब बिल्कुल अच्छी हो गई, क्लियर हो गई, तब बादशाह ने यह बात की है। दाई दीन का किरदार अखलाक बहुत जरूरी है कि वो अपना पाक साफ रखे, बहुत जरूरी है। और हमें इससे ये भी एक पता चलता है कि उसके बाद बादशाह ने उनको बुला के जो एक मकाम दिया, मर्तबा दिया है, तो ये भी अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। ये अल्लाह ताला ही की तदबीर है। ये जो बादशाह कहना है और यहाँ तक यूसुफ अलैहिस्सलाम की गवाही किरदार की मिल जाना है, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत और अल्लाह ताला की प्लानिंग है कि कहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम। लेकिन सारी चीजें हम दुनिया में यहाँ पे सोचते हैं ना कि चीजें शायद हैफेजर्ड हो जाती हैं, शायद वैसे ही इत्तेफाक हो जाती हैं, इत्तेफाक से हम ये किया, इत्तेफाक से हम वहां गए, इत्तेफाक से वो मुझे मिल गई, इत्तेफाक से उसने मुझे कह दिया। ऐसा कुछ नहीं होता, सब अल्लाह ताला की प्लानिंग चल रही होती है। किधर यूसुफ बैठे हुए थे, किधर अपने घर में वालिद के साए के अंडर परवरिश पा रहे थे, किधर वो इतने प्यार से रखने वाले थे कि एक एक दिन के लिए भी उनकी जुदाई नहीं उनको बर्दाश्त होती थी, इतना लाड करते थे। किधर कुएं में पड़े हुए, किधर फिर पहुंच गए, फिर किधर से जेल पहुंच गए। लेकिन आप देखें किसी जगह पे भी ऐसा नहीं है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम, लाडों में भी सुना है ना लोग बिगड़ जाते, ना वहां पे बिगड़े, ना ऐसा हुआ कि वहां पे वो अजीज मिस्र के घर में पहुंच गए वो बड़े तकबर में आ गए हों कि मैं तो अब एक महल में रहता हूं। चाहे बड़े आदमियों के नौकर भी अपने आप को बड़ा ही समझते हैं, वहां पे कोई बड़ाई का एहसास आ जाता हो, या वहां जेल के अंदर रहते भी कोई उनके अंदर ऐसी चीज। आप देखेंगे जो फ्लक्चुएशन मैंने आपको शुरू में बताई थी ना इनकी जिंदगी में, कि बहुत ज्यादा है डाउन, बिल्कुल कहां इतने डाउन कि जेल के अंधेरों में पड़े हुए, और कहां ये कि बादशाह के महल में बादशाह कह रहा है कि जी मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, आप तो बड़े हमारे ऑनरेबल आदमी हैं, मैं बड़ा एडमायर करता हूँ आपको, आप तो बड़े अमानतदार हैं, बादशाह कह रहा है, और एक दिन पहले वो अभी जेल में पड़े हुए थे। क्या दिन एक से रहते हैं बताइए, इसके बाद क्या दिन एक से रहते हैं इस जिंदगी में? नहीं, जिंदगी में दिन बदलते रहते हैं, हालात फिरते रहते हैं, ये कभी कुछ कभी कुछ, कभी ऊंच कभी नीच, कभी ऊपर कभी नीचे। قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم। यूसुफ अलैहि सलाम ने फरमाया कि फिर आप मुझे खजाने का, यानी जो होते हैं ना मुल्कों में खजाने, उस जमीन के खजानों के ऊपर मुझे मुकरर कर दीजिए, यानी खजाने का मिनिस्टर, यानी फाइनेंस मिनिस्टर अगर आप कह सकते हैं, कि मुझे वो बना दें। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम क्यों ये कहते हैं? इसलिए कि जितने बेहतरीन तौर पे उनके पास एक्सपर्टीज थी ना उस चीज की, कोई और उस तरह से हैंडल नहीं कर सकता था आने वाले दिनों में जो कहत आने वाला था, और किस तरह से उसके लिए संभाल के लेके चलना है चीजों को, और उसकी किस तरह से प्लानिंग करनी है। ठीक है, तो कहते हैं कि आप मुझे बना दें, और अगर ऐसी कोई बात हो तो इंसान अपनी सर्विसेज ऑफर कर दे, इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई अपनी तारीफ नहीं है कि मुझे आप बना दें, मुझे कोई ओहदा चाहिए, ओहदे के लिए नहीं। अगर आपके पास कोई काम की काबिलियत है जिसको आप जानते हैं और आपसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं जानता, तो ये कह देना कि आप मेरे से ये काम ले लें, इसमें कोई नहीं हर्ज। इन्नी हफीज उन आली, मैं हिफाजत भी करना जानता हूँ और मैं इल्म वाला भी हूँ। ये क्यों उन्होंने फरमाया? ये उनका समझ लें एक रेज्यूमे था जो वो हैंड ओवर कर रहे हैं कि मेरे पास, अब जैसे आप अपनी डिग्री भी ले जाके देते हैं ना कि मैंने ये किया हुआ, ये किया हुआ, मेरा ये एक्सपीरियंस है, ये बताते हैं ना जब जहां पे आप जॉब के लिए जाते हैं, तो इसी तरह वो बता रहे हैं कि क्यों मुझे दिया जाए, क्योंकि मेरे अंदर ये दो क्वालिटीज है, और यही वो दो क्वालिटीज हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी हैं किसी भी पोजिशन के लिए। एक नंबर वन कि इंसान का कैरेक्टर सही हो, उसके अंदर यानी उसकी रेपुटेशन सही हो, उसका किरदार शफाफ हो, वो करप्ट ना हो, वो बेईमान ना हो, वो झूठा ना हो, वो धोखेबाज ना हो, वो नेक हो बेसिकली, बेईमानियां ना करता फिर। और सेकेंड थिंग, अलीम, उस काम को जानने वाला भी हो, उस काम की भी एक्सपर्टीज हो उसके पास, उसका भी कोई उसके पास यानी नॉलेज हो। अब होता ये है कि हमारे यहाँ या तो हम चाहे कोई पॉलिटिशियन है या कोई भी और ओहदा, तो हम यहाँ तो देख लेंगे अच्छा नमाजी है ना, अच्छा दाढ़ी वाला है ना, चलो जी इसको ये ओहदा दे दो, इसको ये काम दे दो, बड़ा नेक है। अगर वो नेक है लेकिन उसको वो काम ही नहीं करना आता तो वो कैसे करेगा, वो तो तबाह कर देगा उस काम को, चाहे हुकूमत चलानी है चाहे कोई भी और चीज है। अब कैरेक्टर तो देखेंगे, ये ईमानदार है, शरीफ है, सब चीजें देखेंगे, नेक है, सब है, चाल चलन इसका ठीक है, वो भी देखेंगे, लेकिन साथ आप कॉम्पिटेंस भी तो देखेंगे ना कि कॉम्पिटेंट भी है इस काम के लिए। नहीं, अक्सर हुकूमतें क्यों फेल हो जाती, वो कॉम्पिटेंट ही नहीं होती, या कोई कॉम्पिटेंट होता है तो वो चोर होते हैं, ठीक है। तो दोनों चीजें जरूरी हैं, और जहां पे एक भी चीज नहीं होती वहां पे फेलियर्स होते हैं। आप देखिए मूसा अलैहिस्सलाम को जो लड़की लेने आई थी कि मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं, उस लड़की ने भी जाके अपने बाप को क्या कहा था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को हायर कर लें क्योंकि वो कवी हैं और अमीन है, कुव्वत चाहिए थी ना उस काम के लिए, तो कवी भी हैं और अमानतदार भी हैं। अमानतदार का ताल्लुक कैरेक्टर से है, कवी होने का ताल्लुक उस काम की एक्सपर्टीज से है, समझे। तो इसलिए ये दो चीजों की बात यूसुफ अलैहिस्सलाम ने की। वकदालिक मक्कन्ना ली यूसुफ फिल अर्थ, इस तरह से हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को जमा दिया, बसा दिया, इकतदार दिया जमीन में। और आयत 21 में इसी सूरत में हम यही पढ़ चुके हैं। देखें पहले मोसिनीन का जिक्र आया था, वो भी आगे आ रहा है इस आयत में, इसको भी हम पहले पढ़ चुके हैं, और मक्कन्ना का भी जिक्र आया। आयत 21 में मक्कन्ना का जिक्र आया था, वो कब आया था, जब अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अजीज मिस्र का घर दे दिया, तो फरमाया वहां पे हमने उनको बसा दिया, उनके लिए आसानी हो गई वहां पे, वरना कहाँ किसी और के घर जाते और वहां पे लेबर वर्क करते या क्या करते या वो क्या सलूक करते उनके साथ। अब एक महल में रह रहे हैं, वहां पे और हजारों नौकर हैं, और वो अजीज मिस्र ने ले जाके इतना अच्छा सलूक करने का भी कह दिया। तो ये अल्लाह ताला कर रहा होता है, इसका मतलब है कि जहां इंसान जाके बसता है, जहां जाके रहता है, किसी मुल्क में आप जाके वहां की रेजिडेंसी लेते हैं, वहां की सिटीजनशिप लेते हैं, वहां वे जॉब करने के लिए जाते हैं, कहीं आप बसते हैं, आपको कोई ओहदा मिलता है, ये भी सारी अल्लाह ताला की प्लानिंग होती है। जब भी आप देखिए, अब हम किसी और मुल्क में आके रहने लगे, हम सोचेंगे हाँ हमने इसकी बड़ी प्लानिंग की थी, हमने वीजा अप्लाई किया, फिर हमारा वीजा लगा, फिर वो वीजा अप्लाई करना और लगना और यहाँ पहुंचना, और या कहीं आप नौकरी के लिए गए या आपको इकतदार की कुर्सी मिल गई या कोई ओहदा मिल गया, अब उसके पीछे आप सोचे हाँ जी मैंने इस ओहदे के लिए वहां पे पढ़ा था, एडवर्टीजमेंट हुई थी फलाने ने, नहीं, ये सब अल्लाह ताला की तदबीर से हो रहा था, इसलिए कि ये जमीर अल्लाह की तरफ है। मक्कन्ना, हमने इकतदार दिया, हमने पहुंचाया। ये तब्बा उमिन हैसु यशा, वो जगह बनाए इसमें जहां वो चाहे, यानी अब वो खुद अजीज बन गए थे, अजीज मिसर अब खुद बन गए थे, अब जहां चाहते थे जाते थे, पहले के देखें कैद थे, अब कैद से ऐसे आजाद हुए कि जिधर जाएं चाहें जाएं, एक दिन पहले क्या थे और अगले दिन क्या हो गया। अब कितना बड़ा ओहदा, सेकंड टू द किंग, वो ये ओहदा था। और वैसे भी उस वक्त तो उनको जरूरत थी ऐसे किसी शख्स की जो संभालता ये सब कुछ। तो नसीबु बि रहमतिना मन नशाओ, ये हम पहुंचाते हैं अपनी रहमत को जिसको हम चाहते हैं, जिसको हम चाहते हैं। और अल्लाह ताला ऐसे ही नहीं चाहता, अल्लाह ताला तभी किसी के लिए इरादा फरमाता है जब उसके अंदर भी कोई ऐसी क्वालिटीज होती हैं। अल्लाह ताला पहुंचा देता है, असाबा युसीबु, ये मैंने आपको बताया था ना, मुसीबत के लिए भी आता है, मा असाबा में मुसीबत इन आता है ना असाबा, तो यहाँ पे रहमत के लिए भी आया। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसका मतलब ये होता है कि तीर का एन निशाने पे जाके लगना, वहीं पे लगना था, कोई और नहीं। तो मुसीबत भी ऐसी चीज होती है जिसको पहुंचनी है, उसको पहुंच के रहनी है। आप ये सोचते रहे चाहे जितना मर्जी रिग्रेट करते रहे, मैं ना आती, मैं ना जाती, मैं ना ये यहां बैठती, ना ये होता, ना नहीं, वो पहुंच के रहनी थी। इसी तरह रहमत भी है, उसके लिए भी नसीबों का लफ्ज आया, वो भी जिसको पहुंचनी है उसको पहुंच के रहनी है, और ये अल्लाह की मशीयत से ही पहुंचती है जिसके लिए अल्लाह चाहता है। इसलिए फिर दूसरों से जेलस होने का क्या सवाल कि उसको क्यों ये चीज मिल गई, उसके ऊपर क्यों अल्लाह की रहमतें इतनी है। वला नुदिया अजर मोहसिनीन, और अल्लाह ताला जाया नहीं करता अजर मोहसिनीन का। मोहसिन कौन है यहाँ पे, किसकी बात हो रही है? यूसुफ अलैह सलाम की। और पहले क्या बात हुई थी, मैंने आपको बताया ना मोहसिन का लफ्ज भी पहले आया था, वहां पे बात आई थी कि इल्म और हिकमत अल्लाह ताला मोहसिनीन को देते, और यहाँ पे इनका अजर जाया नहीं होता, यानी जो एहसान करता है ना फिर अल्लाह ताला उसको ऐसे नवाजता है। ये आप देखिए मिनिस्टर बन गए हैं, जहां चाहते हैं जाते हैं, कैसे अल्लाह ताला ने इनको कहां से निकाल के कहां पहुंचा दिया। तो बस इंसान आजी में रहे, और किस तरह कोई किधर ऐसे मखदूश हालात के अंदर बाज दफा होता है कि उसको वो सोच ही नहीं सकता कि मैं यहां से कभी निकल सकूंगा, लेकिन अल्लाह ताला हालात कैसे पैदा कर देता है। आज वो मुल्क के ताकतवर तरीन आदमी थे, इख्तियार उनके पास था, वजारत थी, पावर थी, और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक्टिवली शुरू कर दिया वो सारा काम जो उनको जो उन्होंने प्लान दिया था। तो ये नहीं, ऐसे नहीं, यूसुफ डिजर्व्ड इट, अल्लाह ताला ने इसीलिए फरमाया ना हम जाया नहीं करते मोहसिनीन का अजर, ये सब इसलिए कि वो मोहसिन थे। ठीक है, तो अब देखिए जब अल्लाह ताला फरमाने ना अल्लाह ताला जाया नहीं करता, तो इंसान सोचता है ना कि नहीं जाया हो जाता है, कोई फायदा नहीं होता अच्छाई करने का, कोई फायदा नहीं होता भलाई का, कोई भलाई का जमाना नहीं, कोई इसका जमाना नहीं, और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि नहीं वो जाया ही नहीं करता अजर। यूसुफ अलैहि सलाम को भी अजर दिया अल्लाह ताला ने, उनके सबर का, उनकी पाक दामनी का, उनके तहम्मुल का, उनके तवक्कुल का, जबकि वो बेगुनाह थे, तो एक उन्होंने इस चीज की सजा काटी जो वो उनके जो जुर्म ही नहीं था उनका, मगर वो ना अल्लाह ताला से कोई गिला ना कोई शिकवा, उन्होंने तो ये नहीं कहा मेरी तौबा है अब नेकी करने से, अब पाक दामन रहने से मेरी तो तौबा है, मुझे ही सजा मिली इसकी, क्या फायदा ऐसी नेकी का, छोड़ो ऐसी नेकी को। हम अक्सर तो ऐसे ही कहते हैं ना, अगर हमें नेकी करने पे कोई प्रॉब्लम आ जाए, हमने कुछ किया और उसकी वजह से हम ही फंस गए, हमने कुछ भलाई का काम किया था मगर हमें उल्टा उसकी सजा कुछ भुगतनी पड़ गई, तो हम कहते हैं छोड़ो आज के बाद मैं तो नेकी करने से बाज आई। यूसुफ अलैहि सलाम ने तो नहीं फरमाया कि मैं पाक दामन रहने से बाज आया आज के बाद, उनको इसी की सजा मिली थी ना। इसी तरह हम इसलिए ये कहते हैं कि हमें अपने जो नेकी है वो उसको नापने के हमने अपने पैमाने रखे हुए, हमें लगता है कि बस फौरी तौर पे इसका रिवॉर्ड मिलना चाहिए, मुझे कोई इसका फायदा होना चाहिए, मगर जब उस नेकी का कोई फायदा हमें बजाहिर नजर नहीं आता ना, सामने कुछ फौरी तौर पे नजर नहीं आता, तो हमें लगता है वो जाया हो गई है बिल्कुल। अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है, जाया नहीं होती, ये दिमाग में बिठा लें कि जो नेकी भी आप करते हैं वो जाया नहीं होती, नहीं जाया होगी, कहीं नहीं जा रही, मिल जाएगा उसका, थोड़ा सब्र तो करें। उनको कितने दिनों के बाद मिला, 8-9 साल के सब्र के बाद, बल्कि उससे पहले से सब्र करते चले आ रहे। तो ऐसा नहीं है कि जैसे अगले दिन कुछ ऐसा अच्छा हो जाना चाहिए, कुछ भी नहीं हमें तो मिला, हमें तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो ये हमारे अपने पैमाने हैं, इनको छोड़ दें, और ये आप अपने रूल अपने सामने रखें कि अल्लाह ताला नहीं जाया करता, अजर मोहसिन का, अगर मैंने नेकी की है तो शैतान को बहकाने ना दें अपने आप को, कि शैतान आपके दिमाग के अंदर ये डाले ताकि आपको डिस्करेज करे नेकी से, कि आइंदा आप नेकी से बाज आ जाए। ये शैतानी टैक्टिक्स है। जाहिर है कोई इंसान कहेगा मैं नहीं अब आइंदा करता, तो शैतान और यही तो चाहता है, और क्या चाहता है। बल्कि अपने जहन में ये बिठाएं कि अल्लाह ताला फरमाता है वो नहीं जाया करेगा अजर, तो मुझे मिलके रहना है, आदमी तो कल मिल जाएगा उसके। हाँ भेजी भी चीज आप समझते हैं कि वहां पे जाके वो भूल जाएगा, वो भूल से पाक है। आप समझते हैं कि वहां चली जाएगी कोई चीज तो गुम ही हो जाएगी, नहीं, वो इससे भी पाक है। जो उसके वहां पे उसके अकाउंट में जमा करा दी आपने नेकी, वो महफूज है। तो अल्लाह ताला देता है, और यहां पे क्या उनको अजर मिला? अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं, अल्लाह ताला अजर जाया करता मोहसिनीन का। क्या अजर मिला यहाँ पे? यही अजर मिला ना, अल्लाह ताला ने उनको हुकूमत दे दी, ताकत दे दी, इख्तियार दे दिया, दिन बदल गए। तो ये तो दुनिया की सारी नियमतें हैं। इससे क्या साबित हुआ? कि नेकी का बदला, नेकी के समरात इंसान को बाज दफा दुनिया में ही अल्लाह ताला दिखा देता है। बल्कि सुफियान बिन आईना कहते हैं कि इस आयत से पता चलता है कि मोमिन को दो अजर मिलते हैं अपनी नेकी के, अल्लाह ताला उसको दुनिया में भी नवाजता है और आखिरत में भी। और वला अजरु आखिरती खैरुल लिल्लदीन आमनु व कानू यत्तकून। लेकिन ये है कि दुनिया का अजर तो छोटा है, आखिरत का अजर इससे भी बहुत बड़ा है, बहुत बेहतर है ईमान वालों और मुत्तकीन के लिए। तो ये तो सिर्फ दुनिया का ना, इसको इसको फिर भी कम कहा गया, उसको बेहतर कहा गया। हालांकि यहाँ पे अब किसी भी इंसान के लिए टॉप पे पहुंच जाने जो होता है, इख्तदार, हुकूमत मिल जाना, जाहिर है अब उनके तो अपने महल भी होंगे, जाहिर है उस तरह की लग्जूरियस लाइफ होगी, जो वजीर इतने बड़े बन गए थे वो, तो वो सब मिल जाना छोटी बात तो नहीं है, लेकिन वो भी कम है। आखरत का अजर फरमाया उससे भी बढ़ के बेहतर है, ये भी कम है। अभी जबकि हम में से कोई भी अगर बादशाह बन जाए तो हम सोचें कि ये तो मुझे सब कुछ ही मिल गया, इससे ज्यादा अच्छी क्या चीज हो सकती है। लेकिन अल्लाह ताला बताता है कि नहीं, इतनी बड़ी हुकूमत मिल जाने से भी बेहतर आखरत का जो घर है वो है, इंसान को पता ही नहीं। तो आखरत का अजर फिर भी ज्यादा अच्छा है, मगर ये दुनिया की चीजें हैं जो अल्लाह ताला नवाज देता है ऐसे लोगों को, जो नेकी करने वाले थे, जो मोहसिन होते हैं। अल्लाह ताला हमें मोहसिनीन में शामिल फरमा दे। अल्लाह ताला इन आयात से बेहतरीन सबक लेने की हमें तौफीक अता फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुनिए।
وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهم إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون